एक है फेडरल चेंबर ऑफ कॉमर्स पर वो बटा हुआ है, उसके अंदर बड़े लोग नहीं बैठते, बड़े लोगों ने अपना बनाया हुआ है, एप्टमा ने अपना बनाया हुआ, टेक्सटाइल वालों ने, सीमेंट वालों ने अपना बनाया हुआ, फर्टिलाइजर, हर किसी ने अपनी अपनी लॉबी बनाई हुई है और वो लॉबिंग सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, पब्लिक पॉलिसी के लिए लॉबिंग बहुत कम होती है। चेंबर से जब आप जाके बात करें, मैंने काफी दफा कोशिश की है, उनकी एक ही फीलिंग होती है, वो कहते हैं भाई हमसे बड़ी बड़ी बातें ना करें, हमें बताएं हमारे लिए क्या रखा, हमारे लिए इसमें क्या, हम क्या इसमें से पा सकते हैं, ठीक है,
हमें क्या रिलीफ देंगे।
हाँ, क्या आप मुल्क का सोचे, मुल्क की पॉलिसी सोचे, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड का सोचे जहां सब कंपीट कर सके। तो हमारी इंडस्ट्री लेवल प्लेइंग फील्ड मानती नहीं है, वो चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मुझे क्या मिलेगा, कि मैंने पैसे लगाए हैं तो बस मुझे मिलना चाहिए। तो हम इनको बार बार कहते हैं कि जी पैसे तो हर कोई लगाता है, पॉइंट ये है कि आपने कैसे पॉलिसी को इफेक्ट करना है। तो वो अभी शऊर नहीं हमें आया कि हम पॉलिसी की बातें करें, आई होप कि आ जाएगा, पर हुकूमत।
अच्छा डॉक्टर, मैं एक बात करूंगा जो मेरा अपनी कोताही, पिछले कई वर्षों से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में जो बढ़ा था उसकी से बहुत खुश था और प्रमोट भी कर रहा था कि जिसमें हाईवेज का बनना, एयरपोर्ट्स का बनना, ट्रेड रूट्स का बनना कि जिसपे ट्रक्स चल सके, लॉजिस्टिक्स आपके चल सके। लेकिन अब ये बात मुझे भी वाजे हो रही है कि इस सारी चीज के बनने के दौरान हेल्थ और एजुकेशन बहुत रह गई है। एजुकेशन से मुराद प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन, और हेल्थ से मुराद जिस तरह की ये बेसिक एंडेमिक एपिडेमिक या पेंडेमिक से रिलेटेड हेल्थ फैसिलिटीज। तो क्या आपका भी ये तासुर है कि हमने हेल्थ और एजुकेशन पर इस तरीके से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नहीं डेवलप की, और शायद ये कोरोना हमें दोबारा पाकिस्तान की फलाह के लिए जो फोकस है हेल्थ और एजुकेशन उस पर शायद हम बड़े तवज्जो दे सकें?
थोड़ा सा मेरा इस पर नुआंस व्यू है जी, वो ये है कि आप हिस्ट्री में याद करें, मैडम आपकी तरह गौर करें, जो हिस्ट्री में देखें तो ये सिचुएशन है कि हमने जब हम आजाद हुए तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नई नई बनी थी, और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का था वो पाकिस्तान में काफी हद तक उसकी फाउंडेशन बनी, मोर और लेस एक नया मुल्क था, एक ही मुल्क सब आजाद हुआ था तकरीबन, इंडिया आजाद हुआ पर इंडिया ज्यादा सोशलिज्म की तरफ चला गया, वो डेवलपमेंट लॉबी के बीच में नहीं फंसा। तो हमने डॉक्टर महबूबुल्लाह बाहर गए, उसके बाद हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप आए, उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसके ऊपर हम रहे। वो मॉडल यह था कि 5 साल का प्लान बनाए, उसके बाद आप सोचें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो आप बड़ी बड़ी चीजें बनाते जाए, डैम और यू नो सड़कें और ये वो, इट वॉज ब्रिक एंड मोर्टर फोकस, ठीक है। और दूसरी चीज जो उसमें थी बहुत बड़ी, तो हम एड लेंगे। अच्छा, हमने वो डैम बनाया, उसका बड़ा फायदा हुआ, ये नहीं मैं कहता, डैम का बहुत फायदा हुआ, हमारे 70-80 तो बड़े अच्छे गुजरे डैम की वजह से, दो डैम जो हमने बनाए थे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि दुनिया बदल गई, हमने बदला नहीं, हमारे पास कोई बड़ा डैम बनानी हमसे, हम चले गए दूसरी तरफ वो अपना क्या कहते हैं सड़कें बनाने पे, और हमने यूनिवर्सिटी भी बनाई, मुझे साहब ये नहीं कि हमने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, हमने 200 यूनिवर्सिटी बना ली है, बट यूनिवर्सिटी में भी हमने बिल्डिंगें बनाई हैं, आप बेहतर जानते हैं मेरे से, प्रोफेसर कम है, ठीक है ना। हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने पिछले साल जो एक स्टडी की थी उसमें देखा था कि जी प्रोफेसर जोन से है 7 प्रोफेसर पर यूनिवर्सिटी। अब मेरा मतलब 7 प्रोफेसरों पर तो आप देखें ना, आप जानते हैं आपके डिपार्टमेंट मेरे ख्याल 7 प्रोफेसर से ज्यादा है, हर डिपार्टमेंट में वहां तो आपके यहाँ तो 20-30-40-40 प्रोफेसर होते हैं, यहाँ तो 7 प्रोफेसर पर यूनिवर्सिटी है। तो हमारे पास बिल्डिंगें बहुत है, प्रोफेसर बहुत कम है। हमने, मैं ये कहता हूँ, ब्रिक एंड मोर्टर पे फोकस किया, हमने ये नहीं फोकस किया कि हमने सिस्टम को चलाना कैसे। हमारे पास हॉस्पिटल भी काफी उम्र से सब ये नहीं है, पर हम हॉस्पिटल अच्छी तरीके से चलाते नहीं है, और जो बनाए वो भी अच्छे नहीं है। हमारे पास और भी बड़ी चीजें हैं जो हम ठीक, फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट एक बड़ा मजेदार एग्जांपल है, वो ये है कि हमारे पास स्पोर्ट्स स्टेडियम्स तो कोई 60-70 है स्टेडियम्स, पर हमारे पास स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कोई नहीं है, ठीक है, बना लेते हैं बगैर उनको। एक और चीज आप गौर करें, हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं, अगर आप देखेंगे लाहौर में मेरे ख्याल 50 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, जी जी, और इस्लामाबाद में 30 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हर इदारा, हर डिपार्टमेंट अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना के बैठ जाता है, अगेन प्रोफेसर कोई नहीं होता, बट ट्रेनिंग बने हुए।
तो मैं आपको बताऊं
किया ब्रेक
जी 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 1992 में मैंने जब फ्रंटियर पोस्ट इस्लामाबाद में एज ए रिपोर्टर काम शुरू किया, तो मेरी पहली असाइनमेंट, लिटरली माय फर्स्ट असाइनमेंट, वाज टू गो एंड इंटरव्यू हांस वॉन स्पोनिक, जो यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी के پاکستان میں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے, اور وہ اسلام آباد کلب میں مجھے ملے اور بڑے خوش ہوئے کہ میری زندگی کی پہلی اسائنمنٹ ان کو انٹرویو کرنا پڑی. اور ہانس وان سپونک وہی ہیں کہ جو بعد میں عراق سے جو ہے کنٹری لیڈ کر رہے تھے, اور ان پروٹیسٹ وہ عراق کی نکل گئی کہ جب وہ سینکشنز کی وجہ سے بھوک اور غربت بہت بڑھ گئی. سو ہی واز دی ون ہو براٹ دس ٹو دی فرنٹ, بٹ ہی واز ان پاکستان فار مینی ایئرز. ہانس وان سپونک نے مجھے جو کہا وہ ہماری لیڈ اسٹوری لگی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز آر بگ آن اسپینڈنگ برک اینڈ مورٹر, دے آلویز بلڈ اسکولز بٹ نیور پے فار ٹیچرز. تو بالکل آج مجھے 99 ہانس وان سپونک کا 92 کا کہا ہوا جملہ آج مجھے 2020 میں یاد آ رہا ہے کہ پاکستان اینڈ کنٹریز لائک پاکستان would spend money on brick and mortar, they will construct schools but not spend money on teachers.
بڑی اچھی بات, یہ بالکل یہ صحیح ہے. میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ وی فوکس آن ہارڈ ویئر ناٹ سافٹ ویئر. چیزیں چلتی ہیں سافٹ ویئر سے, ہارڈ ویئر تو ٹھیک ہے. اچھا ہمارا سافٹ ویئر پہ غور ہی نہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹروں کو ہم کیا رکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بےچارے گریڈ 19-20 میں بغیر یونیفارم بغیر چیز کے کام کرتے ہیں. مطلب یہ تھوڑا سا ہم سوچ لیں کہ کیا میڈیکل سروس کے. آپ دیکھیں نا ڈاکٹر پچھلے میرے خیال 10 سال سے اسٹرائک کرتے ہیں ہر سال, کوئی نہ کوئی کا مسئلہ ہوتا ہے, اس پہ کوئی غور ہی نہیں کرتا. تو یہ بہت گمبھیر چیزیں ہیں, اس کے اوپر ہمیں کافی چینجز لانے کی ضرورت ہے. پر بیسک چیز جو ہے ہمیں ڈاکٹر محبوب الحق کا ماڈل جو تھا بڑا اچھا تھا اس وقت, میں کچھ نہیں کہتا مجھے بات نہیں, پر دنیا بدل جاتی ہے. دنیا بدل گئی, ہمیں آگے جانا ہے. ہمیں اب غور کرنا ہے سافٹ ویئر کی طرف, ہمیں غور کرنا ہے سوسائٹی کی مینجمنٹ کی طرف, مینج کیسے کرتے ہیں ہم ریسورسز, وہ ہم نہیں غور کر رہے.
ٹھیک, اچھا تو ان سمری اگر مجھے آپ اجازت دیں تو وی لیک جو سمرائز کروں تو یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس پرہیپس از اے گفٹ ٹو پاکستان کہ ایک رک جائیے, ایک تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجیے, ہیو سم انٹروسپیکشن, اپنے ارد گرد دیکھیے اور دیکھیے کہ کیا ہم واقعتاً پریپیئر تھے. 75 سال ہم نے اگر ضائع کر دیے تو کیا ضروری ہے کہ اگلے 75 سال ضائع نہ ہوں, تو کس طریقے سے ری اورینٹ کریں, ہاؤ ڈو وی سرو دی کمیونٹی. ایک سوال جو میں آخری سے پوچھوں گا اس کے بعد میں عارفہ کے حوالے کروں گا, یہ وہ یہ کہ یہ جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے, ابھی میں نے سنا کہ پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک فنڈ بنائیں گے اور ایکسپیٹریٹس کو کہیں گے کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو یہاں اس وقت ٹورانٹو کی حالت یہ ہے کہ ہماری جو بڑی بک سٹور کمپنی تھی چیپٹرز انڈیگو, انہوں نے اپنی 75% سٹاف لے آف کر دیا. ہماری ایئر لائنز نے 80% سٹاف لے, ہمارے جو بڑے پاکستانی جو ریسٹورانٹس میں یا کیب انڈسٹری میں ہیں وہ سب بند پڑے ہیں. تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر پاکستان میں بیٹھے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ ایکسپیٹریٹ کمیونٹی سے جو ڈائسپورا ہے پاکستانی اس سے مدد لے سکیں گے, تو جو جس قسم کی میسو انمپلائمنٹ نارتھ امریکہ اور یورپ میں میں دیکھ رہا ہوں, جس کے پہلے افیکٹس جو ہیں وہ امیگرنٹ ورکرز ہیں, تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ جو ریمیٹنسز کی ہوپ تھی شاید وہ کہیں ثابت نہ ہو پائے. آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
دیکھیں جی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غور کریں جب خان صاحب آئے تھے شروع میں, جب خوشحالی کے دن تھے, جب ماشاءاللہ گوگو ورلڈ تھا, گروتھ بھی ہو رہی تھی, سب کچھ, خان صاحب نے کوشش کی, ڈائسپورا بانڈ کی سب چیزوں, اس وقت بھی پیسہ نہیں آیا, تو اس وقت تو اور بھی مشکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت کو یہ جو ہمارا ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ باہر سے پیسے مانگیں, ذرا تھوڑی دیر پیسے پہ رک جانا چاہیے. آلدو اس کرائسس میں ہمیں چاہیے ہوں گے, میں نہیں کہتا اس کرائسس میں نہیں چاہیے ہوں گے, بٹ پھر بھی ہم اس وقت فوکس کریں. ہمارا کام کیا, ہمارا کام یہ لوکل پبلک ہیلتھ کا, ہمارا کام ہے لوکل اپنا جنگ لڑنے کا, لوکل کورونا سے جنگ لڑنی ہے. اس میں بہت ہم نے کتنے پہلو ڈسکس کیے. ہمارا کام ہے کہ آگے سوچے کورونا کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے سسٹمز ٹھیک کریں. پیسہ آ جائے گا, پیسہ بعد کی بات ہے. پیسہ ہمارا آئے گا, میرے تو خیال ہے پیسہ تب آتا ہے جو لگے کہ آپ خود کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ صرف بھیک مانگ رہے ہیں تو کوئی پیسہ نہیں دیتا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹی ہو رہی ہے تو لوگ سب آتے ہیں, مکھیاں وہاں آتی ہیں جہاں شہد ہو. اگر ہمارے پاس شہد ہی نہیں ہے تو مکھیاں کیوں آئیں گی؟ تو اس لیے ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے. ہماری حکومت, چاہے خان صاحب ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے مشرف ہو, چاہے کوئی ہو, وہ جہاز پکڑ کے بھیک مانگنے نکل جاتے ہیں. خان صاحب نے کہا بھی تھا نہیں کریں گے, پر کر دیا انفارچونیٹلی. تو میری گزارش ان سے یہی ہے کہ خدا را اپنے کام پہ فوکس کریں, پیسہ آ جائے گا, پیسہ نہیں کوئی بڑی بڑی بات.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر مرتضیٰ. میں آپ دونوں کی بات بڑی, بہت شکریہ آپ دونوں کو کہ آپ نے ٹائم دیا. لیسن جو مل رہا ہے, ایک چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ہر انسان اگر اس پہ غور کرے, ہم تمام میں ٹیم اسپرٹ کا فقدان ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, آج پرانی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ندیم الحق کی جیسے, ڈاکٹر مرتضیٰ جیسے لوگ ایک تھنک ٹینکس ہونے چاہیے جو پاکستان کے آئندہ آنے والے دنوں کی پیش بندی کر سکیں, یعنی پلاننگ کر سکیں کہ کیا چیز کس طرح کر کے ہم اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں. صرف امداد مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا, پیسہ قارون کے خزانے بھی ہوں تو وہ خالی ہونے میں دیر نہیں لگتی, مگر اگر آپ اپنے طریقہ کار کو امپروو کرتے ہیں, اگر آپ انڈسٹری کو سیٹ اپ کرتے ہیں, اگر ہماری ملک کی جو اتھارٹیز ہیں لوگوں کے لیے وسائل پرووائڈ کرتی ہیں اور وہ وسائل لوگ ایز اے ٹیم اسپرٹ استعمال کرتے ملک کے لیے لے کر کے چلیں, تو انشاءاللہ دیر از ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے گڈ نیوز فار اس. ایک چیز جو میں فیل کرتی ہوں کہ اگر یہ بیماری اسی حساب سے بڑھتی گئی اور لوگ غربت کی شرح سے کم چلتے چلے گئے, تو ایون وہ لوگ جو پاکستان اور انڈیا سے کینیڈا جیسی بہترین جگہ پہ آئے ہوئے ہیں, جب کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی آئے دن, ڈاکٹر مرتضیٰ نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوگا, ہم تو اکثر ریڈیو پہ بھی کور کرتے ہیں کہ لوگ ضعیف الاعتقادی میں, وہ جو پیر گنڈا کرنے والے, تعویذ گنڈا کرنے والے, ان کی طرف چل پڑتے ہیں. پاکستان جہاں پر وسائل کی بھی کمی ہے, جہاں لوگ بلو پاورٹی بھی زندگی گزار رہے ہیں, اگر وہ ان کرائسس سے گزریں گے اور پھر جن لوگوں کا عروج ہے وہاں پہ, وہ بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہے, تو وہ پھر ضعیف الاعتقادی کی طرف رجحان زیادہ چلتا چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پر موجود ہیں, جناب ڈاکٹر ندیم الحقی صاحب آپ نے دنیا کو بھی گھوما ہوا ہے, آئی بلیو سو کہ ایسے تھنک ٹینکس کو آپ ڈیولپ کریں جو ان برے حالات کو تو دیکھ ہی رہے ہیں مگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے دنوں کے لیے باقاعدہ کوئی پیکج ہم کو دیں کہ ہم کو کیا کرنا ہوگا سو وی کین امپروو آر تھنگز اینڈ آر لائف اسٹائل. آپ دونوں کا بہت شکریہ,
بہت تھینک یو
ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ, ویری نائس اسپیکنگ ٹو یو,
تھینک a lot to both of you, Dr. Murtaza Haider, and it's late in Pakistan, Dr. Nadeem Al-Haqqi. I always take the pride. زندگی میں جو ہمارے وہ لوگ جو ہمیں بہتر طور پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان پہ فخر کرنا بحیثیت قوم میرا اور آپ کا فرض ہے. آپ تمام شکریہ جی, بہت شکریہ, خدا
حافظ, بہت
شکریہ, خدا
حافظ. جی صاحب یہ ایک ملاقات تھی چند ایک سپانسرز, ویلکم بیک.
سٹی آف برامپٹن تو ایک سنیہا کووڈ 19 پینڈیمک دوران تہاڈی سرکار اپنی کمیونٹی دی صحت اتے تندرستی دی سرکھیا لئی کم کر رہی ہے. ٹیکس پیمنٹس تو ٹرانزٹ سروس ہر وشے تے جانکاری لین لئی 1 اپریل دن بدھوار نو شام دے 5:30 بجے ہون والے ٹیلی فون ٹاؤن ہال نال جڑو تے میئر براؤن, سٹی آف برامپٹن, پیل پبلک ہیلتھ, ولیم آسلر ہیلتھ سسٹم, پیل ریجنل پولیس سروس اتے پیل ریجنل پیرامیڈک سروس نال گل بات کرو. رجسٹریشن www.brampton.ca/covid19 تے کیتی جا سکتی ہے. شامل ہوو 1 اپریل نو ہون والے ٹیلی فون ٹاؤن ہال وچ.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر, پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھدے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نو ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس این ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لے لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا سلاح لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نو کال کرو 416-655-2000.
آپ کینیڈا سے پاکستان پیسے بھجوانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فوراً, زبردست ریٹس کے ساتھ اور آرام سے گھر بیٹھے, آپ کو یہ سب ملے گا بغیر کمپرومائز کے. ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے زوم منی ٹرانسفر ایپ فروم پے پال, دیٹس XOOM زوم, اور اپنے موبائل سے پیسے بھیجیے امیزنگ ایکسچینج ریٹس کے ساتھ, بینک ڈپازٹس, کیش پک اپ یا موبائل ریچارج. اب پاکستان پیسے بھیجیں انگلی کے اشارے سے. زوم, اے پے پال سروس, تیز, آسان اور محفوظ منی ٹرانسفر.
عائشہ یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو, گھر میں مہمان آ رہے ہیں, और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैक्लॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज। 5:14:35 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और सब आपको लिए चलूंगा आपके पते की बात करवाने के लिए। रॉजर्स केबल के जनाब वकार खान साहब मेरे साथ लाइन पर हैं। वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको और तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माजिद भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर चल रही है, बहुत सारी प्रमोशन है, पैकेज है टीवी और इंटरनेट का, टीवी है, बहुत सारे चैनल है, 4K PVR है, वॉइस कंट्रोल रिसीवर है, यूट्यूब से कनेक्टेड है, इसके अलावा इंटरनेट भी इसमें 1000 तक की स्पीड का मिल जाएगा पैकेज में, 1000 MBPS की सुपर फास्ट स्पीड, अनलिमिटेड डाउनलोड होगा और बहुत ही अच्छे रेट पे सारा पैकेज है। एक बार कॉल करके जरूर इसकी इंफॉर्मेशन लें, बहुत ही स्पेशल प्रमोशन इस वक्त अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए तो 150 की स्पीड का इंटरनेट है अनलिमिटेड, 500 और 1000 की स्पीड का इंटरनेट भी बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। प्लीज कॉल कीजिए मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, नंबर है मेरा 6478648000। मैं रॉजर्स एम्प्लॉय हूँ, 13 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे उनके सिस्टम में एक्सेस है। आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट अवेलेबल प्रमोशन और एडवाइस दूंगा। नंबर अगेन 6478648000।
अगेन रॉजर्स केबल के वकार खान साहब, इनका फोन नंबर एक दफा नोट कर लें, 6478648000। जनाब वकार खान साहब का फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू सो मच माजिद भाई, खुदा हाफिज।
अल्लाह हाफिज। जी हाफिज।
जी साहब, ये तो थी एक मुलाकात। एंड आई होप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फेसबुक पे आके आप इसको देखिए, डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ रहे। दीज आर द ग्रेट पीपल, दीज आर ब्रेन्स ऑफ पाकिस्तान, थिंकर्स हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे पाबंद किया प्रोग्राम के इस हिस्से को कंडक्ट करने में। ये प्रोग्राम का ये वाला जो इंटरव्यू है जनाब नदीमुल हक के साथ और मुजाहिद साहब के साथ अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह ये रात को 9 बजे रिपीट किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ुद भी देखिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इट्स ऑल रादर देन, हमने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, कोई चीज़ इसमें कट पेस्ट नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं जिनके ऊपर, जिनको हम नहीं मानते, आई मीन लोगों ने उनको फेक डेवलप किया है। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, आप इसको देखिए, इसमें अच्छी बातें भी हैं, इसमें बाज़ ऐसी बातें भी हैं जो कुछ लोगों को नापसंद भी होंगी, मगर फैक्ट्स आर फैक्ट, हकीकत हमेशा कड़वी हुआ करती है। आज रात को 9 बजे ई आवाज़ टेलीविजन और फेसबुक पे ही इंशाल्लाह ये रिपीट भी होगा। प्रोग्राम में अभी मुझे काउंसलेट से एक पैगाम मिला है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। आपको बताइए, पाकिस्तान काउंसलेट अब मोस्ट ऑफ़ दी इंफॉर्मेशन है वो आपसे बाय मेल ले रही है, बाय कुरियर सर्विस दे रही है। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर चार्टर्ड एंड प्राइवेट एयरक्राफ्ट इनबाउंड फ्लाइट्स टू पाकिस्तान 21 मार्च ऑनवर्ड से 4 अप्रैल 2020 तक। ये टेम्परेरी सस्पेंशन जो है, ऑफ कोर्स इसी सर्कमस्टांसिस के हवाले से कि ये बीमारी आगे ना फैल सके। हमारे एक भाई हैं मोहम्मद डार साहब, मेरा ख्याल उनका नाम है, उन्होंने भी आज जब हम बात कर रहे थे कि चाइना में लॉकडाउन का मतलब है कंप्लीट कर्फ्यू, तो उन्होंने कहा कि बीबी अगर ये चाइना में कर्फ्यू है तो पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। इन चाइना अगर आप देखें, वॉन से ये बीमारी शुरू हुई थी, उसके बाद इन शंघाई अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें कितने बीमार निकले शंघाई में से, तो वही डॉक्टर मुर्सा जैसे कह रहे थे कि وہاں کرفیو کا مطلب ہے کہ وہاں کے پرندے بھی اس کو فالو کرنے کے محتاج ہوتے ہیں. یہاں پر اگر یہ بیماری پاکستان میں اگر یہ بیماری ٹریول کی تو آئی مائٹ بی رانگ, میں نے اگین اس نیوز کو پاکستان کے میڈیا پہ دیکھا کہ یس, اور میں نے یہ نیوز کور بھی کی تھی کہ کیا تفتان جو ہے وہ پاکستان کا وان بنے گا. مگر پھر وہاں سے آپ نے اگر ایک شخص کو بھی وہاں سے نکلنے کی اجازت دی تو وہ ایک شخص کیریئر تھا, وہ جتنے لوگوں کو ملتا چلا گیا اس نے ٹرانسفر کیا. بے شمار لوگ وہاں سے ٹریول کرنے کے بعد گلگت پہنچے ہیں, گلگت میں یہ بیماری پھیلی اور فیصل آباد پہنچے. تو دس از ہاؤ دس بیماری واز ٹریول. اینی ویز پاکستان کاؤنسل کا پیغام ہے کہ اگلی انسٹرکشن تک گورنمنٹ آف پاکستان, کاؤنسل جنرل آف پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ ریچنگ آؤٹ ٹو پاکستانیز جو کہ یہاں کینیڈا میں اسٹرینڈیڈ ہیں, یعنی آپ پھنس کے رہ گئے ہیں, اور یقیناً انہوں نے کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے پاکستان پہنچائے, مگر کیونکہ فلائٹس کا سلسلہ اس وقت بند ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریکویسٹ آل دا پاکستانی نیشنلز انکلوڈنگ اسٹوڈنٹس ہو آر فیسنگ ہارڈ شپ ڈیو ٹو دی کینسلیشن آف دا فلائٹس ٹو کانٹیکٹ ٹو دا مشن آن دا فالوئنگ ای میلز. میں آپ کو ای میل دے دیتی ہوں, اگر آپ اسٹرینڈیڈ ہیں یہاں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان واپس جانا چاہتے آتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ کو یہ ای میلز مل جائیں گی. کیونکہ اگر میں یہاں پہ لکھواؤں گی تو یقیناً کہیں نہ کہیں مسٹیک آ جائے گی. آئی ٹرائی ٹو پوسٹ دیز. انہوں نے کہا وی وش ٹو انشور آر نیشنلز دیٹ وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دیم ان دا ڈیفیکلٹ سچویشن کریٹڈ بائی کووڈ 19. ایز سون ایز وی کم ٹو نو آف اینی کیس ویئر اسسٹنس از ان ڈیڈ دا مشن ان کوآرڈینیشن ود دا لوکل اتھارٹیز ول پرووائڈ دا بیسٹ پاسبل ریلیف. تو پاکستان کاؤنسلیٹ کا یہ پیغام ہے. میری کوشش ہوگی کہ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم اس پیغام کو اپنی فیس بک کے اوپر پوسٹ کر دیں گے. آپ ان ای میلز کو وہاں پہ دیکھ لیجئے گا اور آپ آگے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سید علی ہیں, اور کینیڈین گورنمنٹ نے بھی ایک جو ایمرجنسی پیکج کو اناؤنس کیا ہے. دیکھیے صاحب, اتنا عرصہ لبرلز رہے, میں تو ہر گورنمنٹ کو, ظاہر ہے ہماری گورنمنٹس اپنے تئیں کوشش کر رہی ہیں, پولیٹیشینز اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. اب بھی جو سائنٹسٹ جتنے پولیٹیشینز ہیں جو بات کر رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ, بٹ آئی فیل سوری کہ اس پیکیج میں جو ہر اسکرپٹ کے بیچ میں اکثر اوقات فائن پرنٹس ہوا کرتے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی میں ہی سی پی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے سید علی, ہمیشہ ان سے میری بات ہوتی ہے اور ہفتے میں دو بار بلکہ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب وی نیڈ ہم دا موسٹ. میری آپ سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کے سٹاف سے بات کیجئے گا کنسلٹ کرنے کے بعد. ہیو ٹو ہیو گڈ اکاؤنٹنٹ. ڈیفینیٹلی اکاؤنٹنٹس بھی ابھی اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیر مسٹ بی سم تھنگ ان اٹ فار یو. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں, پراپر لوگوں سے جو فلی اکوپڈ لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ رابطہ رکھیے گا, ان شاء اللہ تھنگس ول بی فائن. میرے ساتھ ہیں جناب سید علی صاحب. سید علی ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. سید علی, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بچہ. مجھے بتاؤ بچے, اپنے اب ظاہر ہے جب جب دن گزرتے چلے جا رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اور اسٹل دیر آر گورنمنٹ کا یہی خیال ہے کہ مارچ کے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ویک میں پیپل ول اسٹارٹ گیٹنگ واٹ ایور دے ہیو پرومسڈ.
اپریل کے, ہاں جی,
اپریل فرسٹ اینڈ سیکنڈ ویک میں, بتائیے.
تو جو بیسک پلان ہے وہ تو آتا ہے کینیڈا, جو انہوں نے بھی پلان بنایا ہے, وہ جو میگا پلان ہے وہ ہے کینیڈا اکنامک ریسپانس پلان, اور جو ایمرجنسی ریسپانس پلان ہے وہ اسی پلان کے اندر آتا ہے. تو اکنامک پلان میں سارا کچھ ہے. انڈیویجول سے اگر ہم شروع کریں تو جس طرح چائلڈ بینیفٹ ملتا تھا ہر ایک کو, تو وہ उसमें एडिशनल पेमेंट मिलेगी $300 पर चाइल्ड की फॉर 2019-2020 बेनिफिट ईयर. 2020 बेनिफिट ईयर जो है वो जून में खत्म हो जाता है, सो उससे लगता है कि अगले तीन महीने के लिए वो $300 पर चाइल्ड एक्स्ट्रा देंगे वो इसी कोविड को रिस्पॉन्स में. उसके अलावा वन टाइम जीएसटी पेमेंट होगी $400 की इंडिविजुअल्स के लिए और $600 की फैमिलीज के लिए, वो भी वन टाइम पेमेंट होगी, मगर एनीथिंग एक्स्ट्रा इज बेटर. टैक्स की फाइलिंग जो डेडलाइन है वो आगे कर दी है, ये सबको पता है, जून 1st कर दी है April 30th से, तो एक महीने का उसने एक्सटेंशन दे दिया है. और जो जरूरी बात है वो ये है कि कोई भी टैक्स ओइंग अगर आपके ऊपर है, पर्सनल टैक्स है या आपके पास कॉर्पोरेशन टैक्स है जो कि March 18th के बाद से आपके ऊपर ओइंग हुआ है, वो अब आपने September 1st तक जमा नहीं कराना, सबमिट नहीं कराना, यानी August 31st के बाद सबमिट करना है. तो उसकी एक एक्सटेंशन मिल गई है, तो ये समझ रहे हैं एज एन इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया हर एक को, कि जिसके पास 5,000 की लाइबिलिटी थी टैक्स की वो राइट अवे नहीं जमा करानी, तो 2-4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है. उसके बाद आज जो मॉर्गेज सपोर्ट जिसकी हर बंदा बात करता है, तो वो गवर्नमेंट ने ये किया कि वो उन्होंने बैंक्स के ऊपर ये मतलब बैंक्स को एडवाइस कर दिया है कि बी रीजनेबल विद एवरी क्लाइंट एवरी कस्टमर, मगर लार्जली ये बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हर क्लाइंट को या हर कस्टमर को किस तरह डील करते हैं. वो क्यों आपको खाली इंटरेस्ट की पेमेंट डिफर करते हैं, प्रिंसिपल डिफर करते हैं, वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, मगर जितने तक मैंने पढ़ा है इंटरेस्ट रिलीफ कहीं भी नहीं है, आपका डिफर है. तो वंस अगेन अगर नहीं जरूरत आपकी, इनकम में डिस्ट्रप्शन नहीं आई है, तो उसको मत लें, उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस, जिसमें हर बंदा ऑलमोस्ट हर बंदा आ जाता है. अभी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, अब तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी वर्क जॉब करने की इजाजत है. अगर उनकी भी इनकम अगर इस वजह से इम्पैक्ट हुई है, तो क्योंकि उस एक्ट में इंडिविजुअल्स के बारे में लिखा है, तो आई एम श्योर कि वो लोग भी उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं. बेसिकली उस प्लान में ये है कि अगर आपकी इनकम इस पेंडेमिक की वजह से या इस आजकल के हालात की वजह से अगर आपकी इनकम में कुछ भी इफेक्ट आया है, तो गवर्नमेंट को आप अप्लाई करेंगे अर्ली अप्रैल में वो एप्लीकेशन खोलेंगी, और फॉर द नेक्स्ट 4 months गवर्नमेंट विल पे यू $2,000 अ मंथ, समथिंग वेरी सिमिलर टू EI, मगर दिस विल क्वालिफाई अलॉट मोर पीपल. सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, जिनके पास EI के आवर्स पूरे नहीं भी होते, वो लोग भी इस प्लान के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. तो दिस इज अ गुड प्लान जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, मगर अगेन उसकी थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, और मगर ये कि आप अगर आप समझते हैं कि आप नहीं क्वालिफाई करेंगे, फिर भी आप अप्लाई कर लें, और उसके बाद होपफुली गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई एंगल निकाल लेगी. काफी लंबी लिस्ट है क्वालिफिकेशन की, एज लॉन्ग अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों की केयर करने के लिए आपकी इनकम डिस्टर्ब्ड हुई है, तो तब भी आप क्वालिफाई करते हैं. अगर आपका वर्क खत्म हो गया, आपकी कंपनी ने आपको टेम्पररी ले ऑफ दिया है या परमानेंट ले ऑफ दिया है, तब भी आप क्वालिफाई करते हैं. तो ये काफी अच्छी वो काफी बड़ी और वास्ट प्लान है कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस, और ये April 1st से शुरू होएगा, और बकॉल गवर्नमेंट के और उनके अपने डॉक्यूमेंट्स के आपकी एप्लीकेशन के विद इन 10 days यू विल रिसीव योर फर्स्ट पेमेंट. तो
अली आपका नंबर मैं अनाउंस किए देती हूँ, और हमारी फेसबुक पे ये नंबर बाकायदा आ रहा है 647-786, जिसको हम बिस्मिल्लाह कहा करते हैं, 786-1216, 786-1216. ही इज़ अ CPA, चार्टर्ड अकाउंटेंट है. अली मैं जितनी बात आपकी समझ सकी हूँ, ऑफ कोर्स जिसका काम उसी को साझे, वी नीड योर हेल्प हियर. यानी अगर चाइल्ड टैक्स है तो CRA के साथ एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड, आप लोगों ने अपने चेक्स दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि आपकी एडिशनल पेमेंट उसी के साथ एम्बीड होके आ जाएगी. वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे होंगे, ऑफ कोर्स अगेन CRA के पास उनकी जॉब की कंपनी की तरफ से भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी. माय कंसर्न इज देयर आर मेनी पीपल एंड दोज पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड. देयर आर आई नेवर न्यू दैट देयर आर पीपल हु डू नॉट फाइल देयर टैक्सेस ऑन द रेगुलर ग्राउंड. ये तो मुझे रिसेंटली हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर अहमद हुसैन जब हमारे साथ थे, एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि बहुत से लोग हैं जो अपने रेगुलर टैक्सेस भी फाइल नहीं करते. अब इस सिचुएशन में what will happen? वो लोग जो के जिनकी इनकम कम थी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो अपनी हर चीज राइट ऑफ कर दिया करते होते थे, से 12,000 साल का कमाया जिसमें से 12,000 का 12,000 या 11,000 राइट ऑफ कर दिया, पेट्रोल डलवा लिया, खाना ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब हाउ दे अप्लाई एंड गवर्नमेंट इसको कैसे जस्टिफाई करेगी?
तो उसका उसका यह है कि जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है जिसके अंदर ये सारी जो इंडिविजुअल्स के लिए बेनिफिट और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बेनिफिट्स आते हैं जिसके अंदर, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं, ठीक है, और दो टाइप के लोग हैं जिसकी आप बात करें. एक तो वो जो कि टैक्स फाइल करते हैं मगर उनकी वो अपने सारा कुछ राइट ऑफ कर देते हैं, उनकी इनकम है मगर उनके एक्सपेंसेस भी उतने ही हैं और एटलीस्ट वो उतने ही शो करते हैं, विच इज फाइन. आई मीन बिजनेस जब आप शुरू करते हैं,
ये तो सिस्टम, ये तो सिस्टम हमको ये प्रिविलेज देता है. मैं तो बार बार the strongest man in the world Donald Trump की मिसाल देती हूँ. यानी the man, उसकी earning क्या थी कि उसके taxes के बीच में भी उसने अपनी returns को जो show, and he didn't do anything wrong. This is something in the system, having good accountant, good lawyers. अच्छा lawyer अगर आपका है तो वो तो आपकी गर्दन तक छुड़ा के ले जाता है, कुछ क्यों ना किया हुआ हो.
बिल्कुल. तो उसमें इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो उसमें इनकम रिक्वायरमेंट है, डॉलर अमाउंट डाला हुआ है, मगर ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये जो जो पैकेज है, ये जो सारे का सारा पैकेज है, ये सारा काफी जगहों पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि बेसिकली ऑनर सिस्टम के ऊपर है. और अगर ना भी हो तो उसको पकड़ना के अगर कहना कि जी $5,000 बनाया था तो वो अभी तो टैक्स 2020 का टैक्स ईयर आया भी नहीं है. और अगर आप वो कह रहे हैं कि जी इमीडिएटली बिफोर मार्च 12 मंथ्स प्रायर टू मार्च 15th, तो वो तो कभी से भी शुरू हो सकता है. तो उसके लिए उसको एक्चुअली पॉइंट पॉइंट करना गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल में जरा मुश्किल होएगा. और अगर किसी को फिर भी शक है तो आप 2020 में अपना टैक्स रिटर्न विद $5,000 इनकम जिन्होंने बनाई है, अगेन जिन्होंने इनकम बनाई है वो अपना 2020 में इनकम भी शो कर सकते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बंदा पेरोल के ऊपर काम कर रहा है. जो लोग उबर चलाते हैं या जो लोग किसी स्टोर में काम करते हैं, आपकी अदर इनकम होती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है एक, जिस पर जो आपको पेचेक पे मिलती है, आपकी अदर इनकम होती है जिस तरह वेटर्स की टिप होती है, ग्रेच्युटी होती है, हेयर ड्रेसर्स की टिप होती है, वो हमेशा अदर इनकम में जाती है. तो आप अदर इनकम में वो शो कर सकते हैं और उसके उसको भी शो कर सकते हैं. तो देयर आर वेज अराउंड, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी बड़ी है, उसमें डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, और गवर्नमेंट ये किसी को नहीं कहती कि आपने इस तरीके से ही काम करना है. आपने बस गवर्नमेंट का ये है कि जो इनकम अर्न करता है और जो एक सेट अमाउंट से ज्यादा अर्न करता है वो उस इनकम को डिक्लेयर करे और उसको टैक्स दे. और
अली सैयद सीपीए हैं और नॉर्मली हमारे इंटरव्यूज जो है ना, मतलब जाहिर है थोड़ी देर के होते हैं, बट आई जस्ट वांट पीपल टू नो व्हाट इज इन इट फॉर यू. आई विश दैट एवरीबॉडी कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट हैज गिवन अस. और उसके लिए अगर आप क्वालिफाइड बंदे के पास जाए, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, ऑल बिजनेसेस आर गुड, मगर देखिए साहब तालीम जो है इंसान के साथ उसमें उनकी नॉलेज, उनकी नो हाउ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. अली का नंबर, आप अली सैयद इनका नाम है, सीपीए हैं, इनका नंबर 6477861216. अली, मेरा एक और कंसर्न है, और ये मेरे बच्चे ऑफ कोर्स नोइंग द कम्युनिटी, उसमें उनका भी कसूर नहीं है कि बाज़ औक़ात हम वो कहते हैं ना कि मेरे अंदर की प्रॉब्लम्स को मैं ही जानती हूँ, आउटसाइडर को शायद उनका इल्म ना हो. तो बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, जो वो कहते हैं ना, जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर कोई राह पकड़ी नहीं जा सकती. तो वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो प्रॉब्ली बुक कीपिंग एंड ऑल दीज विल कॉस्ट मी अ लॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं खुद अपना कंपाइल कर लूँ सारी चीज़ें और टैक्स फाइल करूँ तो प्रॉब्ली आई कैन गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग. और ज़ाहिर है इन दिनों में देर आर बुक कीपिंग के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, लोग उस पर आके खुद कर लेते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस टू हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक योरसेल्फ एंड डूइंग एवरीथिंग बाय माय सेल्फ, व्हाट डिफरेंस कैन इट मेक?
आई एनालिसिस एनालाइज देखिए रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है, आप स्कैन कर सकते हैं, आप अपनी माइलेज मतलब डिफरेंट चीजें आप बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर जो एनालाइज करना और उसको प्रिडिक्ट करना कि इन ट्रांजैक्शंस के बाद क्या हो सकता है, अगर हम टैक्स की एग्जांपल लें तो आपकी जो बिजनेस ओनर्स हैं आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन पे टैक्स का इम्प्लीकेशन होता है, चाहे आप कनाडा छोड़ के अपने मुल्क से किसी और मुल्क में जा रहे हैं और आप अपनी टेम्पररी तौर पर आप रेजिडेंट नहीं रहेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी कनाडा में रह जाएगी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, तो आई मीन डिफरेंट चीजों के ऊपर हर चीज के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको एक क्वालिफाइड उसकी क्वालिफाइड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है जो कि आपका असेस कर सके और आपको बता सके कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं, उसके बाद आपकी आपकी बजटिंग में और आपकी एनालिसिस में देखने के लिए कि आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसे आपसे बात करती है, इनकम स्टेटमेंट बात करती है और बैंक जो है वो इनकम स्टेटमेंट से ही बात करते हैं, यस बिजनेस ओनर से बात करते हैं मगर वो इनकम स्टेटमेंट से भी बात करते हैं, और इससे मैं रिलेट करूंगा जो आगे आने वाला टाइम है गवर्नमेंट की स्मॉल बिजनेसेस की काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए हैं जिसमें लेंडिंग काफी ज्यादा है, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे लेंडिंग के लिए तो वो यस वो आपसे बात करेंगे, आपका बिजनेस मॉडल देखेंगे मगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बगैर वो आपसे कोई फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है आपके आपके बिजनेस के लिए, अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है या इवन सस्टेन भी करना है आजकल के जमाने में तो आपको एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए जो किसी क्वालिफाइड अकाउंटेंट ने बनाई है, एटलीस्ट उसको पता है रेशियोज होती हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो रेशियोज को ट्रांसलेट करते हैं और हम रेशियोज बना के हम भी उनको ट्रांसलेट करते हैं, तो इस वजह से एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आगे जाके जिस तरह गवर्नमेंट ने पेरोल सब्सिडीज दी हैं अभी तो वो कोई उसके ऊपर ऑडिट नहीं कर रहे, जिनकी इनकम स्मॉल बिजनेसेस जिनकी इनकम 30% से ज्यादा गिरी है, इनका रेवेन्यू गिरा है, उनको अप टू 75% पेरोल सब्सिडी मिली है, और
अब मैं आपको यहाँ रोकूंगी, 75% सब्सिडी जो मिली है, नाउ इफ दे गो थ्रू एंड अप्लाई दिस थ्रू एन अकाउंटेंट विल इट मेक अ डिफरेंस?
व्हाट विल हैपन इज के अभी दे कैन अप्लाई थ्रू एन अकाउंटेंट and they should apply through an accountant because उसमें qualification criteria ये है कि आपकी income गिरनी चाहिए, sales आपकी गिरनी चाहिए, अगर आप कहते हैं sales गिरी है या आपको लगता है कि sales गिरी है आपको government subsidy अभी तो दे देगी, मगर वो बार बार ये कह रहे हैं कि it's an honor based system and they will check upon it,
आपके bank accounts को देखा जाएगा, revenue को देखा जाएगा। Ali Sayed का number 6477861216। Ali मैं आप ही के reference से good news को share करना चाहती हूँ, प्रोग्राम का हर सेगमेंट इस शाजिया मलिक साहिबा हमारे साथ हैं जो कि न्यूज़ को कवर करेंगी, मगर मैं एक गुड न्यूज़ एंड आई वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ माय सेल्फ बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट के लिहाज से मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर की भी जब रिसर्च हो रही है ना इस वक्त कैंसर के बारे में भी, तो कैंसर में भी आपको पता है कीमोथेरेपी है और मतलब तमाम ये प्रोसीजर्स होते हैं, मगर एक जो रिसेंट एक इसमें चेंज लेके आ रहे हैं कि मेरे आपके बीच में एवरी सेल इट कंटेन्स दी क्रोमोसोम्स, तो अब उन्होंने क्रोमोसोम्स की जो जीनोम है ना जो क्रोमोसोम की सीक्वेंस है उसको देख के, बल्कि मैंने आपके साथ ये बात शेयर भी की थी कि अभी तो मुझे और आप जिंदगी बहुत चेंज हो रही है, आप देखिए रियल स्टेट को कितना चेंज करके रख दिया इस कोरोना वायरस ने, अभी तो जब आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है तो मैं और आप क्या करते हैं कि जी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया, लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया, हमने फॉर्म फिलअप किया, अपने बारे में बताया, फैमिली की हिस्ट्री बताई और हमने लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियाँ अपना नर्स भेजती हैं जो आपका ब्लड टेस्ट देता है आपका वगैरह वगैरह, उसके बाद लैब में चला जाता है, मगर ये मैंने आज से तकरीबन एक साल पहले रिसर्च आपके साथ शेयर की थी कि आते दिनों में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हमारा जीनोम का मुतालिया करेंगी, यानी मेरी जिंदगी के बीच में जो सिकनेसेस मेरी हेरिडिटी के साथ मेरी विरासत में मुझे मिली हैं वो मेरे क्रोमोसोम्स के ऊपर तमाम के तमाम नकुश मौजूद हैं, तो ये बहुत से लोग तो चांद पे इंसान के कदम रखने पे भी बिलीव नहीं करते, बहुत से लोगों ने इस पे भी बिलीव नहीं किया था। अच्छा अब मैं वहाँ से मैं आती हूँ कैंसर की तरफ, तो कैंसर की जो इलाज है उसमें जो हमारा जीनोम क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो सीक्वेंस है इनकी जीन्स की इसके थ्रू भी इसका कैंसर का इलाज किया जा रहा है। अब कैंसर के लिए ये जो इस वक्त कोरोना वायरस है, एंड आई थैंक टू माय दिस स्पॉन्सर एट द मोमेंट जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, सीपी अली सैयद, जिनके रेफरेंस से मैं ये न्यूज़ जो मेरे पास पहुँची मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। ट्रिब्यून एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये न्यूज़ है, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे कहा ना कि मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करती, पाकिस्तान में वेरी लर्नड पीपल आर देयर, आर साइंटिस्ट आर, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कमी है तो रिसोर्सेज की कमी है। आज डॉक्टर नदीमुल हक भी यही फरमा रहे थे कि देर आर प्लेसेस जहाँ पे हमें प्रेशर्स आ जाते हैं, कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा इनक्रेजमेंट मिल जाती है कि वैसे ही हम शहजादे बन जाते हैं, और कहीं हम इतना सप्रेस हो जाते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये उन्होंने कहा है कि कराची में डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उन्होंने होल जीनोम सीक्वेंस टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक कोविड 19, ये जो वायरस है, इस वायरस का पूरा का पूरा जो DNA स्ट्रैंड है उसकी जीनोम का मुतालिया उन्होंने कर लिया, और उसके बाद यकीनन इसका इलाज भी हो सकेगा। इसको SARS-CoV-2 का नाम दिया गया, मेडिकल नेम SARS-CoV-2 के नाम से, और कोरोना वायरस स्प्रेड और इसका बिहेवियर क्या है उसके बारे में किया है। सेंटर ऑफ जीनोम रिसर्च के डॉक्टर पंजवानी, उन्होंने इसके बारे में बताया, मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हैज़ कैरिड आउट होल जीनोम सीक्वेंस ऑफ कोरोना वायरस, जिसको SARS-CoV-2 का नाम दिया गया। इन्होंने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा है, ही सेट दैट द सीक्वेंसिंग वाज कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक ऑफ दिस हाईली कंटेजियस वायरस इन पाकिस्तान, विच वाज मैप्ड बाय द टीम ऑफ यंग साइंटिस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इश्तियाक अहमद विद द कोलैबोरेशन ऑफ डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अगेन होता पता क्या है कि हम, और आप आजमा के देख लें, मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसकी बीवी के बीच में, नॉट एवरीबडी इज़ लाइक मुजफ्फर अली, मैं आरफा मुजफ्फर आज बात भी करती है तो मैं कहती हूँ कि मेरे बोलने में भी मेरे हस्बैंड का कॉन्फिडेंस शामिल है, मगर अक्सर औकात जब लोग बढ़ रहे होते हैं ना, तो औरत जब आगे निकलती है तो अपना आदमी ही कहता है अल्लाह मेरे तो आगे निकल जाएगी, वो पीछे खींचने के चक्कर में होता है। हम अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ नहीं है और हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, साइंटिस्ट इन कराची में हैव आइडेंटिफाइड कंपाउंड्स इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ COVID-19 इन द होस्ट सेल। अब क्या है कि जब उस क्रोमोसोम की या उस वायरस के जीनोम का इन्होंने पता लगा लिया, तो ये वायरस अटैक कहाँ करता है, हमारी बॉडी के ऊपर करता है, से मेरे लंग्स के अंदर चला गया तो मेरे लंग्स इसके होस्ट हैं, हमारे होस्ट ने उस जीनोम को रिएक्ट कैसे करना है वो उस पे काम पाकिस्तान में किया है। दिस इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली सीक्वेंस्ड होल जीनोम ऑफ कोरोना वायरस फ्रॉम पाकिस्तान। एनालिसिस ऑफ द सीक्वेंस रिवील्ड 9 म्यूटेशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ जीनोम एज कंपेयर टू द सीक्वेंस रिपोर्टेड फ्रॉम द वुहान चाइना। जैसे हमने शुरू के दिनों में भी आपके साथ किया था, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये अपना अंदाज बदलता चला जा रहा है। अब अंदाज कैसे बदलता है कि मिसाल के तौर पे मैं हूं तो मैं हूं, मगर अगर मेरे बॉडी की कोई क्रोमोसोम की जीनोम अपनी हैथ को बदल लेती है या अपनी सीक्वेंस को चेंज कर लेती है, म्यूटेट कर जाती है, तो मेरा करैक्टर उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। नॉर्मली म्यूटेशंस अगर हम साइंस की जुबान में देखें तो ये एवोल्यूशन की तरफ चलती हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है ये इवॉल्व हो रहा है एक से दूसरी शेप से तीसरी शेप में। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से बड़ा टेस्ट है, अल्लाह ताला ने इतने मामूली से जानवर की वजह से, जानदार की वजह से, सिंगल सेल्ड, नॉट इवन कॉम्प्लिकेटेड वन, माइटोकॉन्ड्रिया ये वो के साथ नहीं, इट्स अ सिंपल स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम कवर्ड बाय अ प्रोटीन शेल, दैट्स अल्लाह की जात। مگر الحمدللہ آئی ایم ویری پلیز ٹو شیئر ان کے کہتے ہیں کہ اس کا کووڈ 19 ریسپریٹری النس کاز بائی دا مسٹیریس کنٹیجیس آلسو ہیز فار انفیکٹڈ مور دین ہاف اے ملین آف پیپل ان 202 کنٹریز کے بیچ میں. یہ 212 کنٹریز ہیں, 8 ملک اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بڑے ان نون سے ملک ہیں, افریقہ کے ملک ہیں. ایک نارتھ کوریا, اب نارتھ کوریا میں پتہ نہیں, یا تو وہ اپنی چیزوں کو باہر آنے نہیں دے رہے, کوئی نو بڈی نوز دا واٹ از دا ایگزیکٹ ریزلٹس, یا تو انہوں نے ایسے کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اٹس کوائٹ انبلیویبل. دا اونلی نون کنٹری از نارتھ امیریکا جہاں پہ نارتھ کوریا, آئی ایم سوری مائی اپالوجیز, نارتھ کوریا جہاں پہ یہ وائرس یا یہ کرونا وائرس نہیں آیا, یا پھر وہ 8 ادر کنٹریز ہیں جو کہ انتہائی چھوٹے چھوٹے دور دراز کے ساؤتھ افریقہ کے ممالک ہیں. دے آر ناٹ ان کانٹیکٹ ود. Anyways, Ali Sayed, I thank you very much and I shared this news. Pakistan carries out the whole genome sequence to help combat COVID-19. Yani, iski sequence ko samajhne ke baad, jo host cells ne isko react kaise karna hai to iska mukabla karne ke liye, combat karne ke liye, inshallah, that will come out from Pakistan. Ali Sayed ka number aap note kar lijiye. He is a CPA, accountant hai, and he can help you. If you have a small business, call him, talk to him. If you are self-employed, call him, talk to him. Do not wait. نمبر ان کا 6477861216. ہم حالانکہ اتنے لمبے انٹرویوز افورڈ نہیں کرتے, بٹ دس انٹرویو بیکاز اٹس اے ٹیکس سیزن, آل دو ٹیکس سیزن آپ کا پہلی جون تک چلا گیا ہے آگے, مگر ہیو اے گڈ اکاؤنٹنٹ. علی سید کا نمبر ہماری فیس بک سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ علی. یہ سلطان صاحب اس کو رن کرتے ہیں. سلطان بھائی آپ نے ٹیلی ویژنز لینے ہیں, اگین انہوں نے کہا ہے کہ جتنی پریکاشنری میئرز ہیں ان کو لیے جاتے ہیں, یعنی ڈسٹینس, مینٹیننگ دا ڈسٹینس بٹوین دی ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ اور بٹوین دا کلائنٹس. اگر آپ کو فریج, فریزر, واشر, ڈرائر, ٹیلی ویژن کچھ بھی خریدنا ہے تو آپ جائیے 220 volts کا سامان, ابھی تو خیر پاکستان آپ جا ہی نہیں سکتے. تو ان کا نمبر 9054508000. ایک اور انفارمیشن میں ضرور دینا چاہوں گی. ایک ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, بو علی ان کا نام ہے. بو علی نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو یہ گلوز وغیرہ یا اس کو کیا کہتے ہیں, سینیٹائزرز, اگر آپ کو گلوز, مائی اولڈ ایج گلوز اینڈ سینیٹائزر اگر آپ نہیں مل رہے تو بو علی کو آپ کال کر لیجیے گا. بو علی نے کہا ہے کہ ہی ول کم ٹو یور ہوم, آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کو پرووائڈ کریں گے. بارگین ضرور کیجیے گا, ضرور بارگین کیجیے گا, یہ میرا آپ کو کہنا ہے. آپ بارگین ضرور کر لیجیے گا, ورنہ مگر یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں, دس از سم تھنگ ویری یوزفل. آئی گو آؤٹ, آئی پٹ آن مائی گلوز, کیونکہ میں نے نابس کو ٹچ کرنا ہے, میں نے چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے وہاں سنیز کیا, ہو سکتا ہے کسی کو کوئی کیریئر ہو, یا مطلب یو نو واٹ اٹ از. بولی کا نمبر دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ وائنل کے کلیئر گلوز جو ہیں 100 pieces کا باکس ہے, کالے والے بہت اچھے ہیں, کالے والے لیجیے گا. مجھے ویسے بھی کالی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ان سے بلیک ونز آر ویری گڈ, اسمال, لارج, ایکسٹرا لارج, آل آر آل لارج آپ لے لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایزی ٹو اتار کے دوبارہ ری یوز کر. بولی نے مجھے پتا آپ کو کیا کہنا ہے, اس گلو کی عمر دو گھنٹے ہے. نہیں, آپ فکر نہ کریں, میں 2 دن سے استعمال کر رہی ہوں. ہیو دیز گلوز, کیونکہ دیز آر ناٹ اویلیبل, اینڈ اٹس اے کنوینئنس اف سمبڈی کمز ٹو یور ہوم اور گلو اور سینیٹائزر آپ کے گھر چھوڑ جائے, واٹ ایلس. ایوری بڈی از لافنگ ان مائی آفس آن می, کہ مطلب ایک کمرشل کو اگر تم اتنی دیر لوگ بیوی تو کیا چلے گا. بٹ آئی نو ایوری بڈی نیڈ اٹ, آپ کے گھر آ کے ڈراپ کریں گے. بارگین ضرور کیجیے گا. 6474-6656-294-6656-294-6656. بو علی ان کا نام ہے. جی شازیت,
آپ کی جو خبر سنا رہی تھی نا, تھینک یو ویری مچ. یہ تو میں نے آپ کو اس وقت سے پروگرام سن رہی ہوں, بڑا ڈپریسنگ ہو گیا ہے.
تو میں اب لائٹر موڈ پہ اس کو شروع کر لیتی ہوں. وہ اب باقی ساری دنیا کے سائنٹسٹ تو کمر کس کے بیٹھے تھے نا, پر ہمارے کراچی کے سائنٹسٹوں نے کمر کس لی ہے. تو اب اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا, ایک ہمارے بڑے فنی شاعر ہیں پاکستان کے, تو ان کا ہے, کمر کا کسنا سنتے تھے ایک دن سوچا کس کے دیکھیں, پہلے کسیا پھر کھولیا پھر کسیا پھر کھول کے بہ گئے. تو میں نے کہا جی آج کا پروگرام تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ شروع کریں.
وہ ایک اور عربی شعر ہے, میں اب تو پتہ نہیں, میں نے بڑے عرصے کے بعد آج مجھے یاد آیا. وہ انسان بڑھاپے میں, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, مجھے بے اختیار وہ چیزیں یاد آتی ہیں, سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں ہے, آپ بھی اس کو کریں, لاسٹ کی آیتوں کے بیچ میں ہے کہ پھر ہم انسانوں کی شکلوں کو بدل دیتے ہیں. یس, اولڈ ایج اٹ سیلف از کچھ اسی طرح سے ہی ہے کہ انسان کی جوانی نکل جاتی ہے, اور جب بڑھاپا آ رہا ہو تو اس وقت میں احساس بھی نہیں ہوتا. تو وہ کمر کے بارے میں آپ نے کمر کا ایسے ذکر کیا, وہ شاعر کہتا ہے, پیری سے نہیں بل ہے کمر میں, میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی. یعنی جب بڑھاپے میں انسان کی کمر جھک جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا میرے جیسا, تو وہ بڑھاپے پہ یقین بھی نہیں کرتا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو وہ کہتا تھا پیری سے نہیں خم ہے کمر میں, کہ میرے یہ جو کمر جھک گئی ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے, اس میں یہ بل نہیں آیا. میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی, میں صرف اپنی جوانی کی تلاش میں ہوں جناب.
ٹھیک ہے جی, اوکے جی جناب, ٹھیک ہو گیا جی,
ٹھیک ہو گیا.
چلیے ٹھیک ہے, بس پھر ہم بھی کمر کس لیتے ہیں اور اپنی خبریں سناتے ہیں. اچھا تو یہ جناب اپنا اونٹیریو سے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے بچوں کا بہت زیادہ جو اسکول ایئر ہے وہ کافی, جو یونیورسٹی میں بچے ہیں اور ہائی اسکول میں, ویسے بھی جو اس میں ایلیمنٹری سیکشنز میں بھی ہیں, تو اسکولوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے. تو آج اونٹیریو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم تقریباً $25 million جو ہیں پوسٹ سیکنڈری انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو ہم سپورٹ کرنے میں لگائیں گے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سارے جو ایگزامز اور جو اسائنمنٹس بھی ہیں وہ ساری ہم ڈال دیں گے آن لائن پہ. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ایک سائٹ ہے جو کہ انہوں نے دی ہے, جو کہ پوری آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے مل سکتی ہے ontario.ca پہ اگر آپ جائیں تو. ایک ہے ای کیمپس اونٹیریو, ایک ناٹ فار پروفٹ یہ آرگنائزیشن ہے, اور اس کے ساتھ مل کے وہ تمام جو ڈیجیٹل سپورٹ ہے وہ دے رہے ہیں یونیورسٹی کو. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھنا شروع کیا ہے کہ اونٹیریو کے اندر جو ہائی اسکولز ہیں ان کے ٹیچرز جو ہیں ان کو بھی, جو کل جب اناؤنسمنٹس ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اب ای میلز پیرنٹس کو بھیجنی شروع کی ہیں. وہ ان سے اسپیسیفکلی پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے بچوں کے پاس انٹرنیٹ ہے, لیپ ٹاپس ہیں, جیسے کہ ہم نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بڑے کنسرنڈ ہیں کہ بچوں کے پاس آن لائن کام کرنے کے لیے ٹولز ہیں کہ نہیں ہیں. تو اب ان کی ٹیچرز کی ای میلز پیرنٹس کو آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی ہے تو پھر آپ ایک وہ ای میل دے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ہمارے سے کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کے بچوں کو اسائنمنٹس بھی ملیں اور وہ کرتے بھی جائیں. تو یہ بڑا اچھا ایک ہے. یہ جو ہمارے پاس آج جو خبر آئی ہے تقریباً آج لیٹ ان دا ڈے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے جو پبلک اسکولز ہیں, ماجد بھائی پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم 4 یا 5 اپریل تک کر رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ایکسٹینڈ کر دیں گے, اب انہوں نے ڈیفینیٹ ڈیٹ دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں دے ریمین آف ٹل May 1, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ Monday May 4 تک آف ہیں. بالکل ایبسولیوٹلی. اور اس کے اندر جو اسپیشلی مینیٹوبا جو ہے اس نے تو خیر ساری انڈیفینیٹلی سسپینڈ کر دی ہیں ساری, لیکن اونٹیریو کے اندر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب دیکھیں گے کہ یہ بیماری کیسے بیہیو کر رہی ہے. تو ایک تاریخ کے بعد, 1 مئی کے بعد ہم انسٹرکٹ کریں گے کہ آپ نے اسکولوں میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے.
اور میں آپ کو بھی اسے بتا دوں کہ یہ سال کا جو ایئر ہے ان کو آن لائن پڑھا کے
جی,
ان کے ٹیسٹ لے کے
جی,
پھر میرا خیال ہے اس کو
کنٹینیو کریں گے, ایسے ہی کریں گے,
نیکسٹ اس پہ بھیج دیں گے
جی,
مگر بچے اسکول نہیں جائیں گے.
مجھے بھی ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے, مجھے بھی ایسا ہی, مجھے فیلنگ آ رہی ہے
نہیں ابھی اس سال دوبارہ, آئی ڈونٹ تھنک دے گونا ٹیک اے رسک
جی, کیونکہ دیکھیں نا سارے صرف ابھی سے اناؤنس کر رہے ہیں کہ ساری ریکریشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈیورنگ سمر وہ بھی ہم نہیں کھول رہے ہیں. تو آئی مین اگر یہ چیز صرف 4 مئی تک جانی ہے تو پھر آپ سمر کے گیمز اور کیمپس اور وہ سارا کچھ کیوں بند کر رہے ہیں, رائٹ؟ تو
5 مئی تو بھی इधर ही खड़ा
दरवाजे पे खड़ी है,
दरवाजे पे खड़ा हुआ क्योंकि कल अप्रैल फर्स्ट हो गया
जी,
है ना जी,
जी जी
कल अप्रैल फर्स्ट हो गया, उसके बाद तो आप देख लें 35 दिन में तो ये इस तरह से आपको क्या लगता है आपको कि कुछ
वो जो अभी अरफा बाजी खबर सुना रही थी बड़ी वो हौसला अफजाई है ना, वो अगर जीनोम सीक्वेंसिंग क्योंकि उन्होंने कहा है कि 9 compounds उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, और आप देखें कि क्या क्या करती है हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी क्या करती हैं, ये जो डॉक्टर पंजवानी सेंटर है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इसको बंद कर दिया गया था, और इतने खराब लोग थे वहां पे
कि इसको अब जो वहां के मुखय्यर हजरात हैं या जो गवर्नमेंट के वाले हैं उनको चाहिए अब इनके फौरन से पहले इनका हाथ पकड़ें
बिल्कुल, और इनको फंडिंग देनी शुरू कर दें फौरन। अच्छा इन्होंने जी किसी ने वीडियो डाल के और सोशल मीडिया पे डाल दी कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग करें और ये देखें आप आपके साइंसदान और ये बाकी के सारे लोग उस सेंटर में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उनको तो आज उन्होंने बेचारों ने वो बेचारे एक तो डॉक्टर वो इतनी पागलपन में अपना काम कर रहे हैं, इतने स्ट्रेस्ड हैं, ऊपर से वो जी इसके ऊपर वो तौजियात भी दे रहे हैं कि नहीं नहीं जी हम तो अपना काम कर रहे हैं और हम तो रिसर्च कर रहे हैं और हम तो बस सोशल डिस्टेंसिंग ही, ओ माय गुडनेस, तो इट इज इट वाज टू मच, बट एनीवेज वेरी गुड न्यूज, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना कि कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि हर जगह पे ये वायरस चाइना में और तरह से बिहेव कर रहा है, अमेरिका में और तरह से कर रहा है, पाकिस्तान में और तरह, तो म्यूटेट कर रहा है हर जगह के हिसाब से, तो इसलिए इसका एक क्योर नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से ये जो आज पाकिस्तान में उन्होंने किया मुझे लगता है कि ये जल्दी कुछ सामने ले आएंगे चीज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, अच्छा जी, जॉन टोरी साहब ने कहा है कि हम इस वक्त एक वॉर टाइम में की तरह काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने एग्जैक्ट उनके वर्ड्स तो ये नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है हॉस्पिटल्स में आपको देखने के लिए, लेकिन उनका जो ये सेंटेंस था बड़ा अलार्मिंग था कि हम कुछ होटल्स जिनके रूम्स खाली पड़े हुए हैं उनको हम यूज कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनके कि अभी माइल्ड सी कोई फ्लू है या कुछ ऐसे है, पूरी तरह से COVID-19 नहीं हुआ है डायग्नोस, तो इसका मतलब है कि हॉस्पिटल्स की हालत काफी पतली है अगर होटल्स को के रूम्स भी लिए जा रहे हैं,
जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये ऑफ कोर्स
जी
डेफिनेटली नीड ईच एंड एवरी रूम।
हां जी, अब ये जो एयरपोर्ट्स थे क्योंकि ये अब सारे शट डाउन हो गए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो आपको पता है इसमें बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट की पॉकेट में जाती थी, तो आज फेड्स ने कहा है कि ये कनाडा की बात मैं कर रही हूं, तो जितने भी जो एयरपोर्ट्स हैं वो अब गवर्नमेंट को इस दौरान में पैसे नहीं देंगे, एंड दिस इज ओवर $300 million की कुछ पेमेंट्स होती थी जो जाती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब इन हालात में आप अपनी जो पेमेंट्स हैं वो ना करें क्योंकि वो एयरपोर्ट्स जो उनका कोई अब यूज ही नहीं है, तो इस तरह से है। और आपको पता ही है ये केसेस जो हैं कनाडा में काफी बढ़ गए हैं, 8,000 से ऊपर चले गए हैं, ऑन्टेरियो में भी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यूबेक में बहुत बढ़ गए हैं, 4,000 तक पहुंच गए हैं, तो मतलब अब उसको खैर ऑन्टेरियो में तो नहीं पहुंचे लेकिन ऑन्टेरियो में तो 1,000 से ही ऊपर है, तकरीबन 2,000 के करीब है शायद अब, लेकिन क्यूबेक में बहुत ऊपर चले गए हैं, तो इसलिए ये बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए जरा ज्यादा यहाँ पे शायद खलबली ज्यादा मच रही है मुझे लग रहा है।
दो प्रोविंसेस जो हमारे हैं ऑन्टेरियो एंड क्यूबेक, ये
जी
मेनली
यहाँ पे बीसी में जो है वो मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले बहुत तेजी से बढ़े लेकिन आज की जो मैं देख रही थी अराउंड 370 है, शायद 1,000 के करीब अब हो गए हुए, लेकिन कुछ ज्यादा उधर नहीं है, पहले बहुत तेजी से बढ़े बीसी में और अब जो है वो जरा थोड़े काफी कंट्रोल कर लिया। हाँ जी, एयर कनाडा की कुछ दिन पहले हमने आपको खबर सुनाई थी कि तकरीबन 5,000 वो बंदे निकाल रहे हैं, आज जो उनकी प्रेस रिलीज आई है उसमें लिखा हुआ है कि तकरीबन 16,500 बंदे, वो आज उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने लेकिन ये क्लैरिफाई भी कर दिया कि हम इनको टेम्पररीली ले ऑफ्स दे रहे हैं और जैसे ही हालात अच्छे होंगे हम इन सबको वापस लाएंगे, तो मगर ये जरा थोड़ी सी वो है अफसोस की खबर है। अच्छा जी, ये ऑन्टेरियो के अंदर एक कंपनी जो है उसको अब कहा गया है कि आप वेंटिलेटर्स बनाएं, वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा कमी है, तो यहाँ पे एक ऑन्टेरियो की जो कंपनी है उसको जो है वो कह रहे हैं कि आप थॉर्नहिल मेडिकल है उसको कहा गया है कि आप ये बनाएंगे, और उसके लिए मेरे ख्याल में उनकी इसलिए भी अब जो कनेडियन कंपनीज हैं वही हम कह रहे हैं कमर कस रहे हैं, आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे कल खबर दी थी कि जो चाइना से बहुत सारा इन्होंने माल मंगवाया था लेकिन ऑन्टेरियो ने वो बहुत सारा सामान वापस भेज दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो डिफेक्टेड है, वो सही नहीं है। इसी तरह जो और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी काफी सारा सामान भेजा है। तो आज बल्कि मैं सुन रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इस चीज का नोटिस लिया है क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल मेडिकल इक्विपमेंट की डेवलपमेंट पे लगा दिया था। आपको पता है जैक मा का भी कुछ दिन पहले हमने आपको एक वो बयान सुनाया था कि मैं पाकिस्तान को और दूसरे कंट्री, तो इसलिए अब जो है कनेडियन कंपनीज जो है वो कह रही है कि हम ये अपनी चीजें खुद से बना ले जो है। तो इस सिलसिले की आज
दे आर मेकिंग इन मिलियंस।
जी जी बिल्कुल,
मास्क जो है वो समवेयर अराउंड 60 मिलियन मास्क
जी,
एंड वो जो है अभी फर्स्ट ओरो जो उनको मिला है वो 6000 वेंटिलेटर्स का मिला है, एंड उसमें से 1500 या 1600 जो है वो नेक्स्ट वीक तैयार होकर बाहर आ जाएंगे।
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी वैसे ही है। अच्छा जी, सबके बीच में क्राइम्स वैसे तो बहुत कम हो गए हैं लेकिन एक बहुत ही दिल दहलाने वाला एक क्राइम हुआ है, ट्रिपल होमिसाइड। ये एक घर के अंदर जो है वहां पे प्रिंस अल्बर्ट के अंदर ये हुआ है कि वहां पे माँ बाप थे, दो बच्चे थे, तो माँ बाप को भी मार दिया, एक छोटे से 7 साल के बच्चे को भी मार दिया, और जो बहन थी छोटी बच्ची जो थी वो बहुत ही क्रिटिकल हालत में थी। पुलिस को कोई तकरीबन कल 4 बजे के शाम 4 बजे 4 PM के पास खबर मिली थी, तो वो उन्होंने रश किया तो उन्होंने देखा वो 3 की डेथ हो गई थी और बच्ची को फिर उन्होंने एयरलिफ्ट किया वहां से, बट शी इज ऑल्सो इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ट्रंप साहब जो हैं अब कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे मैं खोल दूंगा 12 तारीख को ईस्टर पे सारा कुछ, तो अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज बड़े क्रूशल हैं। लेकिन माय गॉड अगेन, आपने जैसे पहले कराची यूनिवर्सिटी की न्यूज पे कहा ना सीरियसली, वैसे मैं अब फिर से आपको फॉक्स न्यूज की खबर सुना रही हूँ, एंड आई ऑल्सो सेड सीरियसली। तो वहां पे वो एक उनके बहुत ही पॉपुलर हैं प्रेजेंटर फॉक्स के एंकर, वो